शांति। आज की बाबा की प्यारी मुरली पवित्रता पर है। बाबा क्यों आए हैं? बाबा आए हैं अपने बच्चों को पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया का मालिक बनाने। बाबा कहते हैं, काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे, काम विकार को जीतने से और विकारों पर भी जीत सहज हो जाएगी। सारा झगड़ा ही इस काम विकार का है। तो काम जीत सो जगत जीत। दुनिया में जगत जीत बनने के लिए कितनी हिंसा कर रहे हैं, दूसरे देश को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विश्व का राजा बन जाऊं, कईयों ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने बाहुबल का इस्तेमाल किया। अभी भी वही हाल है। तो बाहुबल से समझते हैं हम उस देश को जीत सकेंगे, और बाबा कहते हैं बाहुबल से कोई भी विश्व को जीत नहीं सकता, किसी को भी जीत नहीं सकता, लेकिन योग बल और फिर पवित्रता, पवित्रता और योग, इसके आधार से ही तुम जगत जीत बनते हो। कितना सरल उपाय है। कोई हिंसा की जरूरत नहीं है, कोई मारकाट की जरूरत नहीं है। तो आज की सारी मुरली पवित्रता पर है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 12 जनवरी 2026 है। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, तो पावन बनना पड़ेगा। तो क्या करो, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बस ये एक ही काम करना है, काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। तो हम सब कौन है यहाँ बैठे हुए? सब काम जीत सो जगत जीत बनने वाले बच्चे बैठे हैं ना। प्रश्न है, हरेक अपनी एक्टिविटी से, एक्टिविटी माना चाल चलन से, व्यवहार से, हरेक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? मन में क्या सोचते हैं ये तो पता नहीं। बाबा कहते हैं बाबा भी नहीं कोई थॉट रीडर है जो सबके मन को पढ़े क्या सोच रहे हैं, लेकिन कर्म से तो पता चलता है ना। तो हरेक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर है, मैं हंस हूं या बगला हूं? बगला हूं। हंस क्या करता है, बगुला क्या करता है, अंतर कितना है तो पता तो चल जाता है ना। हम अपने आप को भी देख सकते हैं, मैं हंस हूं या बगुला हूं। मैं हंस हूं या बगुला हूं, ये हरेक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। क्योंकि हंस क्या करता है, हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। जो बच्चे हंस है होंगे वो कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले तो दुख देते रहते हैं, वो विकारी होते हैं। हाँ, बगुले बहुत चलाक होते हैं ना। एक टांग पर खड़े होंगे, जैसे ऐसे योगी कई एक टांग पर खड़े होते, तो बगुले एक टांग पर खड़े होंगे, एक आंख उनकी बंद होगी, परंतु उसकी एक आंख से वो क्या करेंगे, देखते ही रहते हैं कहाँ मछली है, तो मछली जैसे ही आएगी फट से उसको पकड़ लेते हैं मछली को। तो बगुले क्या करेंगे, हाँ वो अवगुण पकड़ेंगे, अवगुण पकड़ेंगे और उन्हीं अवगुणों का ही चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे। तो बाबा कहते हैं बगुले तो दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। हंस की तो बड़ी महिमा है ना, देखो देवताओं को भी जैसे सरस्वती को हंस पर दिखाते हैं, अपने बगुले पर किसी को कभी नहीं दिखाया। बगुले दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो, थे तो बगुले ही ना पहले भी, पहले तो तुम फारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। हंस बनाना माना पारस बुद्धि बनाना, जो लोहे को भी सोना कर सके। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो जैसे ओम शांति कहा, आत्मा का स्वधर्म याद आया। घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है, वहां तो बहुत शांति है लेकिन वहां बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। इस ओम शांति में सारा ज्ञान है, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। तो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, वो बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मनुष्य नहीं बना सकता किसी को पवित्र शांत स्वरूप, बाप ही बनाते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है, पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं, और अपवित्र दुनिया में पांच विकार हैं। इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया, अपवित्र दुनिया अर्थात विकारी दुनिया, जहां सब में पांच विकार हैं। वो है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं, वो है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। पावन दुनिया है दिन सुख, और ये पतित दुनिया क्या है, भटकने की रात। केवल रात नहीं पर भटकने की रात, ये है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, सब सो जाते हैं ना, केवल चोर लुटेरे डाकू वही घूमते होंगे, या हो सकता है जिसकी बहुत नाइट ड्यूटी है, परंतु वैसे कोई रात को भटकते नहीं है, सब सो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यूं तो रात में कोई भटकते नहीं है, परंतु क्यों कहा भटकने की रात, द्वापर कलयुग भटकने की रात, क्योंकि भटक भक्ति को भटकना ही कहा जाता है। यहाँ सेवा वहां सेवा भटकते रहते हैं ना, सब मंदिरों में जाना, दर्शन करना, जो कुछ भी तीर्थ करना, गंगा स्नान करना, भटकते ही रहते हैं। परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने, तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे। बताओ कितने पाप किए होंगे 63 जन्म में हमने, सब पाप थे, पांच विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य आत्मा पाप आत्मा बन गई है। ये तो हरेक जानते हैं कि हम पतित हैं और पाप आत्मा भी है, पतित भी है और पाप आत्मा भी है। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशंस बिगड़ गई है, सारे गुण चले गए हैं एक काम विकार के कारण। इसलिए बाप कहते हैं, काम को जीतो तो तुम जगत जीत, अर्थात नए विश्व का मालिक बनेंगे। तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम नए विश्व का मालिक बनेंगे। हाँ, काम को जीतना क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं है, वो तो समझते काम विकार तो जैसे हमारा माई बाप है, हाँ उसको कैसे छोड़ सकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है काम विकार, इस पर ही कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है, हाँ क्यों है हाहाकार, क्योंकि पाप आत्माएं हैं, सब पाप आत्माएं हैं, तो पाप आत्माएं क्या करेगी, हाहाकार ही करेगी। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी चीज काम की नहीं है, अब बताओ पूरा होलसेल कोई भी चीज काम की नहीं है। तो भंभोर को आग लगनी है, अब कोई चीज काम की नहीं होगी तो उसको जला डालते हैं ना, भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग नहीं लगती है, आत्मा ही तोड़ जाएगी, वतन में परम धाम चली जाएगी, आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर्ड है, मनुष्य इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योर कराते हैं, समझते कभी भी मर जाएं तो चलो घर वालों को मिलेगा या जो कुछ भी है, तो पर वो तो शरीर को कराते हैं, आत्मा को तो इंश्योर नहीं करा सकते ना। शरीर को इंश्योर कराया जाता है, आत्मा तो अविनाशी है। तो बच्चों को समझाया गया है ये खेल है, आत्मा तो ऊपर रहने वाली पांच तत्वों से बिल्कुल अलग है, पांच तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। इस पृथ्वी के अंदर, सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है, चीजें वस्तुएं सब पांच तत्वों से ही तो बनी हुई है, तो सारी दुनिया की सामग्री पांच तत्वों से ही बनी हुई है। आत्मा तो नहीं बनी है पांच तत्वों से, आत्मा नहीं बनती है, आत्मा तो बिल्कुल अलग है। आत्मा तो सदैव है ही, वो कोई बनती नहीं है, न बनती है न बिगड़ती है न घिसती है न जलती है न कटती है, वो तो सदैव है ही। सिर्फ क्या करती है, सिर्फ क्या होता है आत्मा को, सिर्फ पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती है, पुण्य और पाप बस इसी के खेल में है। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है, आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा। इन पांच विकारों के कारण सब कितने गंदे बन जाते हैं, गंदे बन जाते हैं पांच विकारों के कारण। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने, विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। हाँ, फिर काम के पीछे क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा, ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी हेराफेरी बेईमानी छल कपट निंदा चुगली, हाँ ये सब बाबा कहते काम विकार। और काम विकार का की जड़ क्या है, देह अभिमान, तो देह अभिमान की सारी वंशावली है। तो बाबा कहते हैं कैरेक्टर किसको कहा जाता है, विकार ही सारे कैरेक्टर बिगाड़ते हैं, कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। हाँ, चरित्र किसको कहा जाता है, आजकल लोग चरित्र शब्द नहीं कहते, मानवता, मानवता क्या कहती है, तो मानवता, तो मानवता भी तो यही कहेगी ना, चरित्रवान बनो। ये भी समझते नहीं है। ये है ऊंच से ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। अब नशा चढ़ाओ हम कौन है ऊंचे से ऊंचे रूहानी गवर्नमेंट में। पांडव गवर्नमेंट न कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। पांडव गवर्नमेंट कहेंगे तो फिर वो महाभारत याद आता है जो केवल लड़ते हैं राज्य थोड़ा सा पाने के लिए। तो पांडव गवर्नमेंट न कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है, क्या करती है ईश्वरीय गवर्नमेंट? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट कर रही है, आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवताएं कहां से आए? अब किसी से पूछो ना देवताएं कहां से आए, अब उनको पता तो गाने के लिए ऊपर से आए। अब ऊपर से ऐसे कैसे आए? हाँ, कोई छू मंथर थोड़ी हुआ जो ऊपर से ऐसे देवताएं गिरे। तो बाबा कहते हैं ये पूछो, बाबा कहते हैं नहीं तो देवताएं कहां से आए ये कोई भी नहीं जानते। है तो वो भी मनुष्य, देवताएं है तो वो भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया उनको देवता? देवताएं तो होते ही है स्वर्ग में, तो उनको स्वर्गवासी किसने बनाया? अपने आप तो नहीं बन गए ना स्वर्गवासी, किसने बनाया होगा? स्वर्गवासी फिर जरूर नर्कवासी भी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। ये भी तुम नहीं जानते थे, और फिर कैसे जानेंगे? हम ही नहीं जानते थे जो स्वर्गवासी बनते हैं, देवताएं बनते, हम ही नहीं जानते थे तो और कैसे जानेंगे कि स्वर्गवासी कैसे बनते हैं, नर्कवासी कैसे बनते हैं? अब तुम समझते हो हाँ कैसे बनते हैं स्वर्गवासी और नर्कवासी? बाबा कहते हैं तुम समझते हो ये ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा अनुसार सब होता है। इतने सब एक्टर्स हैं, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, स्टूडेंट है तो ये सारी पढ़ाई है तो वो तो बुद्धि में होनी चाहिए ना। और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बाबा कहते हैं बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है, बहुत बड़ा शब्द बाबा नहीं कहते हैं, पतित बनना बहुत खराब बात है। हाँ, माँ भी बच्चे को कहेंगी बेटा ये बहुत खराब बात है, तो बाबा भी कहते हैं पतित बनना बड़ा खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, ये आत्मा समझती है ना। आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर न सके, आत्मा निकल गई तो शरीर वहीं गिर पड़ता है ना, ठहर नहीं सकता, रेस्पॉन्ड मिल न सके। अब डेड बॉडी से आप कितनी भी बातें करो रेस्पॉन्ड थोड़ी मिलेगा, जवाब तो मिलेगा नहीं, रेस्पॉन्ड तो मिल न सके। आत्मा जानती है हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। सब इस समय दुनिया में पतित दुनिया के लायक है। अब जब तुम पावन नहीं बनेंगे तब तक, हाँ जब तक तुम पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक भी नहीं बन सकेंगे। सीधी बात बाबा कहते हैं, जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक भी नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट अभी संगम पर ही की जाती है, नरक क्या है स्वर्ग क्या है ये भेंट अभी ही कर सकते हैं, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। सत्युग में नहीं करेंगे कि अभी हम स्वर्ग में हैं और पहले नरक में थे फिर नरक में जाएंगे, कोई भेंट नहीं है वहां। इस संगम पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। क्या है पवित्र बनने का हथियार? पवित्र बनने का हथियार बाबा क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। और सबको आत्मा देखो, ये पवित्र बनने का हथियार है। तो पवित्र बनने का हथियार तुमको मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ, उस पतित पावन को बुलाते हैं। ये स्वर्ग के मालिक है ना लक्ष्मी नारायण, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है, तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, श्री कृष्ण का चित्र श्याम भी बना देते हैं फिर सुंदर भी होता है ना, दो प्रकार के चित्र बनाते हैं, श्री कृष्ण के सुंदर चित्र भी तो बहुत है ना, और श्याम भी बहुत है, ये सब काले काले चित्र श्री कृष्ण के बनाते हैं। तो बाबा कहते इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं, कहां श्री कृष्ण को इतना सुंदर बनाया और कहां श्री कृष्ण को एकदम काला बनाया है, तो इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब क्या अर्थ है इसका, बाबा कहते हैं वही आत्मा है जो सुंदर भी बनती है फिर वही श्याम भी बनती है, तो अर्थ तो यही है। कृष्ण को भी कितना तुमको, कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। अब इसमें दोनों दुनियाएं कर दी है, कहां श्री कृष्ण को गोरा बनाया कहां काला बनाया, माना ये दोनों दुनियाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण जब गोरा है तो सतयुगी दुनिया है, जब काला बना आत्मा काली बनी तो नर्क की दुनिया है। तो बाबा कहते इसने दो दुनियाएं कर दी है, वास्तव में दो दुनियाएं तो है ही नहीं, ऐसे नहीं कि दो दुनियाएं हैं, वो एक दुनिया में श्री कृष्ण गोरा होगा दूसरी दुनिया में काला होगा, नहीं, दो दुनियाओं की बात नहीं है, दुनिया एक ही है, लेकिन वही आत्मा स्वर्ग में है तो गोरी है फिर कलयुग में आती है तो काली है, वास्तव में दो दुनियाएं तो है ही नहीं, दुनिया तो एक ही है, वो नई और पुरानी होती है, वह एक ही दुनिया। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं, है ना, वो भी कितना अंतर है, छोटे बच्चे कितने प्यारे होते हैं और बूढ़े हो गए तो कैसी हालत हो जाती है, तो इसलिए वो सुंदर हो गया बच्चा सुंदर है, फिर बूढ़ा हुआ तो श्याम हो गया। तो बाबा कहते हैं पहले छोटे बच्चे नए होते हैं फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं, तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने भी समझा है ना ये बातें, समझ से कितने मीठे बन गए, कितने मीठे हैं लक्ष्मी नारायण, कैसे बने, समझा ये ज्ञान पूर्व जन्म में, किसने समझाया, अब समझा ये ज्ञान, पर समझाया किसने, भगवान ने, लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं, कितना पवित्र है शिव बाबा, कितना पवित्र है, शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वो कौन है शिव, क्या करते हैं ये कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, बस ये कहते रहते हैं और गंगा स्नान करते रहते हैं ना, अभी यहाँ शिव काशी विश्वनाथ गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ, अगर उनको समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं, हमको सब समझ है, तुम क्या समझाएंगे। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई जानते नहीं है, राम राज्य सतयुगी नई दुनिया को कहा जाता है, तो तुम्हारे में भी नंबर वार है जिनको ये धारणा होती है ज्ञान की। कई तो भूल भी जाते हैं, ज्ञान ही भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका फिर काम क्या है, दुनिया तो सब पत्थर बुद्धि है, तो अभी हम बच्चे पारस बुद्धि बन रहे हैं ज्ञान लेकर, तो जो पारस बुद्धि बन रहे हैं उनका काम क्या है, दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी तो वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए, तो जो पत्थर बुद्धि है वो बगुले हो गए और जो हंस बनते हैं वो तो पारस बुद्धि है। क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना, हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले तो दुख ही देते रहते हैं। कई है जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं। हाँ, सेंटरों पर तो बहुत आते होंगे ना, नए नए होंगे तो कोई निर्विकारी थोड़ी है, पवित्र थोड़ी होंगे, कोर्स करने आते हैं। तो यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, आते रहते हैं, क्लास करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, फिर बहाना बनाते हैं। हाँ, बाबा ने एक दिन कहा था ना, बहाना क्या बनाते हैं, आऊंगा तब तो मैं पवित्र बन सकूंगा, अगर आऊंगा नहीं तो कैसे बनूंगा, अभी तो नहीं हो, ताकत नहीं है, पर आऊंगा तो शक्ति मिलेगी, तो बहाना बनाते हैं। हाँ, फिर कहते हम तो ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ, ब्राह्मण है नहीं क्योंकि पवित्र रहते नहीं है, परंतु है झूठ। अब इसको कहा जाता है झूठी दुनिया, वो नई दुनिया है सच्ची दुनिया, और अभी है न नई दुनिया है न पुरानी दुनिया, अभी है संगम। कितना फर्क रहता है दोनों दुनियाओं में, कितना फर्क है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वो थर्ड ग्रेड बनते हैं। चलो बाबा के हैं, कहलाते तो हैं हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं झूठ भी बोलते हैं, विकारों में भी जाते हैं, तो झूठा काम करने वाले वो फिर थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और फिर हाँ बाबा कहते थर्ड ग्रेड, ये सब होते हैं ना। तो बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है, पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, हाँ ये तो इम्पॉसिबल समझते हैं ना, दुनिया में तो यही समझते हैं, दोनों इकट्ठे रहे और पवित्र रहे ये असंभव है, ऐसे समझते हैं। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि क्यों ऐसे मनुष्य समझते हैं, क्योंकि उनमें योग बल नहीं है, उनमें परमात्मा की शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है, देह अभिमान है, इसलिए। तो योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। फिर बच्चे भी ऐसे, उनका पूरा योग बल नहीं है तो फिर औरों को समझा भी नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते, उनको समझाना चाहिए। ये तो लोग पूछते कैसे आप लोग इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हो, तो बाबा कहते हैं पर बच्चों में योग बल नहीं है तो इसलिए समझा नहीं सकते पूरा। तो उनको ये बात कोई नहीं समझाते हैं कि हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान की शक्ति से हम पवित्र बन रहे हैं। अब वो कहते हैं पवित्र बनने से क्या कहते हैं भगवान, कैसे शक्ति आती है, वो कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो क्यों ना बने हम पवित्र, कितना बड़ा प्रलोभन भगवान देते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे, अगर अभी पवित्र बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं वो तो है ही पवित्र दुनिया, पवित्र दुनिया में पतित कोई भी हो न सके। पांच विकारी नहीं है, वो है वाइसलेस वर्ल्ड, और ये है विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया, वो निर्विकारी दुनिया। हमको तो सत्युग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। हाँ, कोई कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम कहते क्यों नहीं हो सकता है? 21 जन्मों की हमें बादशाही मिलती है, इतना भगवान हमें देते, बस एक काम कहते करो पवित्र बनो, तो क्यों नहीं बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है ना, कितनी जबरदस्त लॉटरी है, बस एक जन्म पवित्र बनो, 21 जन्म स्वर्ग का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है हमको, तो खुशी होती है ना। देवी देवताएं पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे, तो बताना चाहिए हमको। ये टेम्पटेशन है, ये प्रलोभन भगवान हमें देते हैं। हाँ, प्रलोभन होता है ना तो फिर काम भी करते हैं, वो सहज हो जाता है काम, क्योंकि प्रलोभन है, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये प्रलोभन है, तो ये टेम्पटेशन है। बाप भी ऐसा बनाते हैं, बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना न सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी ही रात्रि गाई जाती है, शिवरात्रि, शिव भगवान आते हैं। ये भी समझाया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीन बातें हैं। ज्ञान और भक्ति तो आधा आधा है, भक्ति के बाद है फिर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। तो ज्ञान आधा कल्प, भक्ति आधा कल्प, फिर संगम क्या है, वैराग्य। तो फिर है वैराग्य। अब घर जाना है, संगम पर बाबा हमें आकर के लक्ष्य देते हैं, बच्चे अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में अब रहना नहीं है। 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम, कहाँ जाना है, उस स्वर्ग की दुनिया में। तो पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप तो अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, नरक का विनाश तो हो जाना है। नरक का विनाश करते नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। हाँ, पुरानी चीज तो अपने आप ही होगी ना, फिर वो अंत भी उसका जैसे अपने आप ही हो जाता है। बिल्डिंग पुरानी हो गई तो कोई गिराए न गिराए अपने आप गिर जाती है ना। तो बाबा कहते हैं नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना होगा, बाबा कहते हैं बहुत छोटा। स्वर्ग कितना छोटा, नई दुनिया में तो एक ही धर्म होता है, यहाँ तो है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया, अब नई दुनिया में एक धर्म है तो वो एक धर्म किसने स्थापन किया, ब्रह्मा ने तो नहीं किया। भले ब्रह्मा के लिए कहते स्थापना करते, लेकिन ब्रह्मा ने तो नहीं एक धर्म स्थापन नहीं किया ना, किसने स्थापन किया। हाँ, बाबा कहते हैं ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है, तो किसने स्थापन किया, जो सदा पावन है वो तो शिव बाबा है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे मैं पतित से पावन बना, तो बाबा कहते ब्रह्मा तो पतित से पावन बनता है और नई दुनिया का मालिक बनता है, तो बनाता कौन है जो कभी पतित नहीं बनता। तो बाबा कहते मेरे लिए तो नहीं कहेंगे मैं पतित सो पावन, पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ये प्रजा पिता है ना, शिव बाबा को तो अनादि क्रिएटर कहा जाता है, और प्रजा पिता माना प्रजा रचने वाला, तो शिव बाबा को तो अनादि क्रिएटर रचयिता कहा जाता है। अनादि अक्षर ये बाप के लिए है, बाप अनादि है तो और कौन कौन अनादि है, तो आत्माएं भी अनादि है, और तीसरी चीज कौन सी अनादि है, ये खेल भी अनादि है। परमात्मा अनादि, आत्माएं अनादि, और ये खेल भी अनादि, माना इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, सदा से ही है। तो ये खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन माना अवधि का ज्ञान मिलता है। अब ये किसने दिया, किसने दिया, बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, उस धनी के बन जाते हो। हाँ, वो धनी से इतना बड़ा वर्षा मिलता है 21 जन्मों का। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में आकर निधन के बन जाते हो, कोई धनी धोनी नहीं, लड़ते झगड़ते आपस में। तो रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो, यहां से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं, विकार है ना। बाकी दो दुनियाएं नहीं है, दुनिया एक ही है, वही निर्विकारी दुनिया फिर विकारी दुनिया बनती है, दो दुनियाएं नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं, या तो कहेंगे स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे है, या तो कहेंगे यहाँ ही स्वर्ग नरक है, अभी जो धनवान है वो स्वर्ग में है, जो गरीब है वो नरक में है। हाँ तो यही है नरक स्वर्ग और सब साथ में ही है। बाबा कहते हैं अब तो तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम हो गुप्त, तुमको कोई जानते नहीं कि इतना ऊंचा ज्ञान हमारे पास है जो भगवान ने दिया है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, कि पांडवों के लिए भी क्या क्या लिख दिया है, देवताओं के लिए भी क्या क्या लिख दिया है। बाबा कहते हैं क्या क्या लिख दिया है, सूत कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा न सके, इतना सूत मूंझा हुआ है। एक शास्त्र में एक बात होगी, दूसरे शास्त्र में उसी को ही काटा होगा। तो बाबा कहते सूत मूंझा हुआ है तो कोई सुलझा नहीं सके, सिवाय बाप के कोई सुलझा न सके। उन्हें ही पुकारते हैं, शिव बाबा को ही पुकारते हैं जो सारा सूत आकर के सुलझाता है। हम कोई काम के नहीं रहे, ये कहते हैं भगवान को, हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर के पावन बनाओ, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते, सत्युग में कितने सुंदर कैरेक्टर होंगे, चरित्र होगा हम आत्माओं का, कितने कैरेक्टर सुधरते हैं। कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं, चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते, कल बगुला बन पड़ते, देरी नहीं लगती है हंस को बगुला बनने में, देरी नहीं लगती है, पर बगुले को हंस बनने में हाँ देरी लगती है, मेहनत करनी पड़ती है। हंस कहलाते हैं और बक्कल बगुला बन पड़ते में देरी नहीं लगती। माया भी तो गुप्त है ना, क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है, पहले अंदर में जब किसको गुस्सा है किसके प्रति तो शुरू में पता नहीं चलता है, भौं भौं करते हैं, कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, भौं भौं करते हैं, तो फिर वो बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है, भौं भौं करते हैं तो बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है, फिर क्या होता है, फिर तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, तो भागंती हो जाते हैं, कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं, एकदम पत्थर बन जाता है। आए थे पारस बुद्धि बनने, और अगर भागंती हो गए, बाबा कहते एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है, इंद्र को तो बांस आई नरक के मनुष्य का, कि बांस ही उसको पता चल गई कि यहाँ कोई नरक का मनुष्य बैठा है। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है, ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं, ज्ञान का विनाश तो हो नहीं सकता। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। बहुत बड़ी चेतावनी, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है, वो तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। अभी तो कलयुग बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, हाँ अभी छोटा बच्चा। तो बाबा कहते 40,000 वर्ष कह देते हैं, सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। अब 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए, हाँ कितने हो जाए, 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने हजार वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर के अभी इतना कुछ हो गया है और लोग समझते हैं ना कि बस अभी ये अंत है, तो बाप आकर के धीरज देते हैं। जब बहुत दुख होता है ना तो मनुष्य सहन नहीं कर सकते, फिर कहेंगे बस ऐसे तो मर जाएं तो अच्छा है। फिर बाबा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं सोचो, धीरज देते हैं बाबा। तो बाप आकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उनों की बुद्धि इस तरफ तो आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो क्या वो है, हमारी बुद्धि को अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, कहाँ पत्थर बुद्धि और कहाँ पारस बुद्धि बनते हैं, तो कितनी बदलती है। फिर भी पारस बुद्धि बनते बनते बाबा कहते फिर भी माया धोखा जरूर देती है, वो छोड़ती नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सचमुच माया से बचना है तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। ये इच्छा ही अच्छा बनने नहीं देती है ना। तो बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया। देखो बाबा ने कितना सावधान किया, अंदर में कोई भी इच्छा है तो गया। वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई न कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। अब माया से धोखा खाया, हाँ कुछ ऐसी भूले की दे अभिमान में आए, तो बाबा कहते हैं फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते बाबा के, फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के भी दिल पर नहीं चढ़ते हैं ना, कुछ ऐसा गलत काम किया तो माँ बाप के दिल पर कैसे चढ़ेंगे, लौकिक में भी नहीं होता। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं, बाबा ने क्या कहा, ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, बाप को भी खत्म कर देते हैं। पिता के पास अगर बहुत धन है मान लो, पर पिता नहीं देता है तो बस आप धन क्यों नहीं दे रहा है, तो पिता को ही खत्म कर देते हैं, बताओ। तो बाबा कहते हैं तो पिता को ही खत्म कर देते हैं, बहुत ऐसे केस होते हैं। तो फिर अखबार में एक बार पढ़ा था ना, कलयुगी बेटा, कलयुगी बेटे ने कैसे अपने बाप की हत्या की। तो ऐसे नहीं बाप ने बेटे ने बाप की हत्या की, लेकिन कलयुगी बेटे ने, सतयुग में थोड़ी ऐसे कोई हत्या करेगा अपने बाप की। तो बाबा कहते हैं जो बाप को ही खत्म कर देते हैं लौकिक में, परिवार को ही खत्म कर देते, इतना गुस्सा आता है जो परिवार को ही खत्म कर देते हैं, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। केवल पाप आत्मा नहीं और आगे महान पाप आत्माएं। रावण क्या कर देते हैं, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। ऐसी गंदी दुनिया से बाबा कहते दिल नहीं लगानी चाहिए, पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। शुरू की बात सो अंत की बात, विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है, इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर के पावन बनाओ। पति पावन आओ माना आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया के दोखों से बचने के लिए क्या होना चाहिए? माया के दोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। आज का ये बड़ा सबक है, माया के दोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। डर्टी गंदी गंदी दुनिया, छी छी बाबा कहते ना, इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर वन तकदीरवान भव। नंबर वन तकदीरवान भव बनना है तो क्या करना होगा? त्रिकालदर्शी में स्थिति में स्थित रहे सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर वन तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो। किसको कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति? आदि मध्य अंत, इसका क्या नतीजा होगा? हाँ, ये सोच करके फिर बाबा कहते हैं हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो, ये क्यों ये क्या ये क्वेश्चन मार्क न हो, सदा फुल स्टॉप। केवल ये देखो इसका नतीजा क्या होगा अगर ये करेंगे तो। तो बाबा कहते हैं ये क्या क्यों का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। कैसे होगी हलचल समाप्त? आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर वन तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो क्या होगा? तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। कठोर संस्कार होते ना, तो सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अव्यक्ति शारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो के अंतर्गत आप लोगों का स्लोगन है। क्या है हमारा स्लोगन? मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लिखा है ना, शांति स्तंभ पर भी लिखा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो ये पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। मुक्ति का भी अनुभव और जीवन मुक्ति का भी अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करना है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है। जो भी भाई बहने पांडव भवन में रुके हैं, पांडव भवन में रुके हैं माना शांतिवन से आए हैं, पांडव भवन में रुके हैं या यहाँ आकर के निवास लिया अकोमोडेशन, वे मुरली क्लास के बाद अकोमोडेशन ऑफिस में चंद्रशेखर भाई जी से मिले, क्योंकि उनके रूम चेंज होंगे। अगर यहाँ रुके हैं आए हैं ऊपर और रुकेंगे तो उनके रूम चेंज होंगे, इसलिए चंद्रशेखर भाई से अकोमोडेशन ऑफिस में जाकर मिले। अकोमोडेशन ऑफिस वहाँ ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पीछे है, यहीं पर से जाते हैं ना, तो अभी जा करके मिले। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी बैठे रहेंगे और आपको आज का प्रोग्राम देंगे।